स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना। बनाएगा वही हिम्मत न हारना, रास्ता बनाएगा वही हिम्मत न हारना,
हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना,
रूह पाक मददगार है, हिम्मत न हारना, रूह पाक मददगार है, हिम्मत न हारना, रूह पाक मददगार है, हिम्मत न हारना, रूह पाक मददगार है, हिम्मत न हारना, दनाई बख्शेगा वही हिम्मत न हारना, दनाई बख्शेगा वही हिम्मत न हारना,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से परिवार के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल से यिर्मयाह नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इस पुस्तक के द्वारा आप अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन से सीख सकें, अध्ययन कर सकें। यिर्मयाह की पुस्तक से जब हम वचन सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें ताकि हमारे श्रोता भाई बहन के जीवन में जो भी कमजोरियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, जो भी बुराइयां हैं दूर होने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें शांति और छुटकारा दें ताकि हर एक जीवन आप में आनंदित होने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यिर्मयाह की पुस्तक की प्रस्तावना में हम देख रहे थे कि यिर्मयाह याजक वंश से था और योशिय्याह के राज्य काल में मूसा की व्यवस्था खोजने वाला, जिसके कारण देश में जागृति आई थी, उसका पुत्र था। अब हम उसकी बुलाहट के विषय में देखेंगे। आइए आप मेरे साथ यर्मिया की पुस्तक एक अध्याय उसके चार पद को निकाल लीजिए। लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का वचन यर्मिया के पास पहुंचा। मैं इस बात पर अधिक बल नहीं दे पाऊंगा। यदि आपको रुचि न हो तो रेडियो बंद कर दें, क्योंकि इसमें आपके लिए संदेश नहीं है। यह परमेश्वर का वचन है और मैं आपको बता नहीं सकता कि यह वचन कैसे यर्मिया के पास पहुंचा। सच तो यह है कि वह पहुंचा और हमारे लिए परमेश्वर का लिखित वचन है, इसलिए आप रेडियो बंद ना करें। यर्मिया एक अध्याय उसके पांच पद में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आज एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, बच्चा कब बच्चा कहलाता है? बच्चा उसी समय बच्चा हो जाता है जब वह गर्भ में धारण किया जाता है। भजन संहिता 139 में दाऊद कहता है, पद 15 में, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझ से छिपी ना थी। अर्थात जब उसकी माता उसे गर्भ में धारण किए हुए थी, तब वह अस्तित्व में था। मुझे एक स्त्री रोग चिकित्सक ने बताया कि भ्रूण की आरंभिक अवस्था में महान विकास होता है, अतः गर्भपात यदि जान बचाने को ना किया जाए तो वह हत्या है। परमेश्वर के वचन का इस संदर्भ में यही दृष्टिकोण है। परमेश्वर ने यर्मिया से कहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। परमेश्वर को यर्मिया से यह सब कुछ कहने की आवश्यकता क्यों थी? मेरे मित्रों, परमेश्वर यर्मिया को आज्ञा देगा कि वह यहूदा वासियों को अस्वीकार्य संदेश सुनाए। परमेश्वर के लिए खड़े होने के कारण यर्मिया को काल कोठरी में डाला जाएगा। उसका संदेश उसके लिए हृदय विदारक होगा, क्योंकि वह अपने लोगों से प्रेम करता था और उनका भविष्य बताते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था। परमेश्वर को ऐसा ही मनुष्य चाहिए था। उसका संदेश सुनाने के लिए एक कोमल मनुष्य, राजा आहाब और इजेबेल के महल में परमेश्वर ने एक कठोर मनुष्य एलिया को भेजा था। परंतु यहूदा के बंधुआई में जाने से पूर्व परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा को यह बोध हो कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उनको बचाना चाहता है, उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता है। अतः उसने यर्मिया को चुना। मेरे मित्रों, परमेश्वर यर्मिया को यह सब इसलिए सुना रहा है कि उसे प्रोत्साहन मिले। उसने कहा, यर्मिया, मैं चाहता हूं कि तू जान ले कि महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं हूं जिसने तुझे बुलाया है। मैंने तेरा अभिषेक किया है और तुझे सेवा के लिए अलग किया है। यहां अभिषेक का अर्थ है परमेश्वर की सेवा के लिए अलग कर देना। मंदिर के पात्र तो ऐसे घिसे पिटे थे कि आप देखकर ही उसे फेंक देना पसंद करेंगे, परंतु वे पवित्र कहलाते थे क्योंकि वे परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किए गए थे। परमेश्वर ने यर्मिया से कहा, तेरे जन्म से पूर्व ही मैंने तुझे मेरी सेवा के लिए अलग कर लिया है, इसलिए अपने संदेश की प्रतिक्रिया की चिंता मत कर और जाकर मेरे नाम से संदेश सुना। स्पष्ट बात तो यह है कि परमेश्वर मुझसे भी यही आशा रखता है। मैं अपने संदेश तैयार करते समय इसी कारण शांति पाता हूं। मैं परमेश्वर का संदेश ज्यों का त्यों ही सुनाता हूं। यह मेरा उत्तरदायित्व है। मैं कहता हूं कि मैं आपके सामने नहीं, परमेश्वर के सामने उत्तरदायी हूं। मुझे उसी को लेखा देना है। यदि मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं, तो अच्छी बात नहीं है। काश आपको अच्छी लगती। जब मैं कलीसिया में सेवा के लिए जाता हूं, तब लोग कहते हैं कि आपसे लोग प्रेम करते हैं, परंतु प्रत्येक कलीसिया में झगड़ालू और अपवादी मनुष्य होते हैं। स्मरण रखें कि परमेश्वर के वचन की प्रचार में आप परमेश्वर के समक्ष लेखा देंगे, क्योंकि उसने आपको अलग किया है और जो काम आप कर रहे हैं वह परमेश्वर के द्वारा आपको ही दिया गया है, अर्थात सौंपा गया है। परमेश्वर आगे कहता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। यह यर्मिया का अधिकार वचन था। इससे उसे प्रोत्साहन मिला जिससे उस अंधकार के समय सहायता प्राप्त होगी। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अब यर्मिया की प्रतिक्रिया को देखें। यर्मिया की पुस्तक 1:6 में लिखा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। उस समय यर्मिया लगभग 20 वर्ष का था, परंतु इस पद से ऐसा प्रकट नहीं होता है। यहां लड़का शब्द का अर्थ है जवान। यही शब्द जकर्याह की पुस्तक में 2:4 में काम में आया है। दौड़कर इस जवान से कह, यर्मिया उस समय एक युवक था। यर्मिया के कहने का अभिप्राय यह था, मैं अभी इतना बड़ा नहीं और न ही इतना अनुभवी हूं इस कार्यभार को संभाल सकूं, मैं इसके योग्य नहीं हूं। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि परमेश्वर उसी को चुनता है जो सोचता है कि वह कुछ करने के योग्य नहीं है, उसमें कोई भी क्षमता नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ करने के योग्य हैं, तो परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है, वह आपको नहीं चुनेगा। एक युवा प्रचारक शहर में सेवारत एक प्रचार के प्रति घृणा से भरा मेरे पास आया और कहने लगा, मैं उससे अधिक अच्छा हूं, अर्थात अच्छा प्रचार कर सकता हूं, उससे अच्छा पास्टर हूं, उससे अच्छा बोल सकता हूं, परंतु परमेश्वर मुझसे अधिक उसे काम में ले रहा है, क्यों? मेरी सेवा फलहीन है। तब मैंने उससे कहा, आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं और जहां तक मैं उसे जानता हूं वह सोचता है कि वह नहीं कर सकता है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को काम में लेता है। परमेश्वर ने इस संसार की निर्बल वस्तुओं को चुन लिया है। यर्मिया सोचता था कि वह अक्षम है, अयोग्य है, उसके पास साधन नहीं है। अब सुनिए कि परमेश्वर का उत्तर क्या है। यर्मिया की पुस्तक 1:7 में हम पढ़ते हैं, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं तू वही कहेगा। आज बाइबल आधारित कलीसियाएं ही विकास कर रही हैं, जबकि मुक्त विचारक कलीसियाओं के प्रचार मंच अधिक हैं। मुक्त विचारकों के साथ समस्या यह है कि वे जो कहते हैं उसमें स्वयं विश्वास नहीं करते। वह कल्पनाओं और धारणाओं का प्रतिपादन करता है। वह सभाओं का आयोजन करके अपने विचार व्यक्त करता है। परमेश्वर कहता है, जो कुछ मैं आज्ञा दूं तू वही कहेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि आप जो वचन सुनाते हैं यदि वह परमेश्वर का वचन है तो वह सुविधाजनक एवं अद्भुत होगा। मैं यर्मिया से प्रेम करता हूं और उसे ढाड़स बंधाकर सौभाग्यशाली होता हूं। उसने निश्चय ही मुझे ढाड़स बंधाया है। यर्मिया की पुस्तक 1:8 में लिखा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। तू उनके मुख को देखकर मत डर। मेरे रेडियो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम की एक लाभकारी बात यह है कि मेरे श्रोतागण मेरी किसी बात से रुष्ट हो तो तुरंत मुझ तक नहीं पहुंच सकते। मुझे एक व्यक्ति ने पत्र लिखा कि वह एक ऐसे पंथ का अनुयायी था जो उद्धार पाने के लिए मंत्र जाप में विश्वास करता था। वह एक ठेकेदार था और काम पर जाते समय वह हमारे रेडियो कार्यक्रम को सुनता था। उसने लिखा, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि आप मुझे पापी कहते थे। यदि मैं आपके सामने होता तो आपकी नाक पर एक जोरदार घूंसा मारता। वह लंबा चौड़ा था और मेरे विचार में वह ऐसा ही करता। यह एक कारण है कि रेडियो पर प्रभु का वचन देना आसान है। मैं परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्यता निभाता हूँ, तो मैं ऐसी बातें कहता हूँ जो श्रोताओं को चुभती हैं। रोचक बात तो यह है कि वह दिन प्रतिदिन हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनता रहा और एक दिन उसने प्रभु यीशु से कहा कि मैं पापी हूँ, मेरा उद्धार कर। उसने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन के प्रचार का यही आनंद है। यही कारण है कि परमेश्वर कहता है कि साहस धारक विश्वास के साथ उसके वचन का प्रचार करें। वचन खाली नहीं लौटेगा, वह परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेगा। आज परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों अधिकार के साथ सुनाने वालों की बहुत आवश्यकता है। वह हमें बस यही करने को कहता है। एक प्रकार से यह बड़ा आसान काम है, परंतु है बड़ा कठिन। परमेश्वर यर्मिया से कहता है, मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। मार्टिन लूथर कहते थे, परमेश्वर के साथ एक ही मनुष्य बहुमत है। यह सदा सच है। हम मसीही जन सोचते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, परंतु हम वास्तव में बहुसंख्यक हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। यर्मिया की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर ने धर्मशास्त्र के वचन को प्रेरणा से रचा है, केवल विचार और संकल्पनाओं को ही नहीं डाला है। उदाहरण के लिए, शैतान को परमेश्वर ने प्रेरित नहीं किया था कि झूठ बोले, परंतु धर्मशास्त्र कहता है कि शैतान ने झूठ बोला तो वह प्रेरित के द्वारा लिखा गया। मैं अचूक अनुवाद के महत्व का एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक लड़की गायिका बनना चाहती थी। अपना प्रदर्शन देकर वह प्रसाधन कक्ष में आई जहां उसकी सहेलियां थी। उसने पूछा, मेरे शिक्षक ने क्या कहा? उसकी एक चतुर सहेली ने उत्तर दिया, उसने कहा तुम्हारा गीत गाना स्वर्गिक था। उसने पूछा, क्या उसने ऐसा ही कहा? क्या उसने इतने शब्द कहे? नहीं, उसने यह तो नहीं कहा, परंतु उसके कहने का अर्थ यही था। उसने कहा, मैं जानना चाहती हूं कि उसने क्या शब्द कहे। क्या उसने कहा कि मेरा गीत गाना स्वर्गिक है? उसकी सहेली ने उत्तर दिया, उसके कहने का अर्थ यही था, परंतु जो उसने वास्तव में कहा वह यह था कि आपका गीत अलौकिक शोर था। देखा आपने कि धर्मशास्त्र के वचनों का परमेश्वर से प्रेरित होना कैसा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने यर्मिया से कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाल दिए हैं। यर्मिया की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यर्मिया योशिया के यहोयाकीम, यहोयाहाज, यहोवाकीन और सिद्दिकिया के राज्य काल में भविष्यवाणी कर रहा था। इन सब राजाओं के विभिन्न विभाग और विभिन्न परियोजनाएं थी। वे सब यरूशलेम की उन्नति करना चाहते थे। वे पर्यावरण संबंधित कार्य करना चाहते थे और झुग्गियों को हटाना चाहते थे। उनमें से प्रत्येक के पास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, परंतु उनमें से किसी ने भी यर्मिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, आज 3000 वर्ष बाद क्या आप उनमें से एक परियोजना का नाम बता सकते हैं? क्या आप सिद्दिकिया द्वारा किए गए एक भी लाभकारी कार्य का उल्लेख कर सकते हैं? क्या आप यहोयाकीन या यहोयाकीम के द्वारा किए गए किसी विकास कार्य का उल्लेख कर सकते हैं? एक भी अच्छा कार्य नहीं है। उस युग में हर एक मनुष्य यही सोचता था कि वह उचित ही कर रहा है, सर्वमान्य कार्य कर रहा है, और वे यिर्मयाह की बात नहीं सुन रहे थे। आज हम किसका संदेश पढ़ते हैं, यिर्मयाह का या किसी और का? मेरे मित्रों, यिर्मयाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन है। वह तब भी था और आज भी है। आज परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परंतु परमेश्वर बात करता है और उसका वचन अटल है। यदि आप उसके वचन को नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह परमेश्वर का वचन नहीं है। वह परमेश्वर का वचन है और अटल है। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है कि वह यहूदा राज्य में उसका वचन सुनाने के लिए यिर्मयाह को कार्यभार देगा, परंतु अभागा यिर्मयाह उत्तरदायित्व संभालने से पूर्व ही सेवानिवृत्ति चाहता था। अब परमेश्वर यिर्मयाह को भविष्यवाणी की बुलाहट से संबंधित दो दर्शन देता है। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह की पुस्तक एक अध्याय उसके 11 पद। लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। बादाम के पेड़ सुबह जागने वाला या निगरानी करने वाला जाना जाता था। शीत ऋतु के बाद बादाम का वृक्ष पहला होता था जो बसंत ऋतु में सबसे पहले फूल लाता था। बादाम के पेड़ के समान यिर्मयाह को भी उन्हें जगाने वाला बनना है। वह उन्हें जगाने का प्रयास करेगा, परंतु वे जागना नहीं चाहते थे। संसार में अलार्म घड़ियों को लोग पसंद नहीं करते हैं। मैंने भी अनेक बार अपने अलार्म घड़ी दीवार पर से उठाकर रख दिया। यिर्मयाह को यहूदा राष्ट्र का जगाने वाला होना था। यिर्मयाह एक अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। परमेश्वर ने कहा कि तूने ठीक देखा, मैं तुझे वचन दूंगा जो उन्हें जगाएगा, उन्हें नींद से झकझोर कर उठाएगा। तब यिर्मयाह एक अध्याय के 13 पद में लिखा है, फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हांडा दिखाई पड़ता है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। उबलता हुआ हांडा, यह क्या है? यिर्मयाह के युग में मिस्र और अश्शूर देश दक्षिणी राज्य यहूदा के लिए खतरा नहीं थे, परंतु उत्तर में उर्वर क्षेत्र के निकट एक उबलता हुआ हांडा था। यह बेबीलोन राजा था जो एक दिन यहूदा को नष्ट करेगा। अतः यिर्मयाह का उत्तरदायित्व था कि वह अपनी प्रजा को भावी संकट के प्रति सचेत करे, उन्हें आगाह करे, उन्हें बताए। यिर्मयाह के पुस्तक एक अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर के शहर पनाह और यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। मेरे प्रियो, 100 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने यरूशलेम को बचा लिया था और झूठे भविष्यवक्ता कहते थे कि परमेश्वर फिर से उनकी रक्षा करेगा। यशाया के समकालीन होशे, योएल, आमोस, मीका और नाहुम आदि सब भविष्यवक्ता कूच कर गए थे। मेरे विचार में सपन्याह और हबकूक अब भी जीवित थे। यहेस्केल और ओबद्याह यिर्मयाह के समकालीन थे, परंतु उनकी भविष्यवाणी का आरंभ बंधुआई में होगा। दानियल भी बाद में ही भविष्यवाणी करेगा। इस समय तो यिर्मयाह अकेला ही है और उसे देश पर आने वाले दंड की घोषणा करना है। उसके संदेश की प्रतिक्रिया क्या होगी? आइए हम पढ़ें यिर्मयाह के पुस्तक 1 अध्याय उसके 19 पद में। वे तुझ से लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह बढ़ा चल, वे तेरा संदेश नहीं सुनेंगे, वे तेरा विरोध करेंगे, परंतु तू प्रचार कर। यिर्मयाह भविष्यवाणी की सेवा के लिए स्वयं को अयोग्य समझता था, अतः उसने बहाना बनाया। परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तेरे मुंह में अपना वचन डालूंगा और तू मेरा वचन सुनाएगा। मेरे विचार में जब तक किसी को विश्वास ना हो कि यह परमेश्वर का वचन है, तब तक वह प्रचार मंच पर खड़ा होकर प्रचार ना करे। यदि वह अपने विचार रखना चाहे या सामाजिक सुसमाचार सुनाना चाहे, तो वह प्रचार मंच पर ना चढ़े। उसने चाहे कितने भी बड़ी बड़ी उपाधियां और उपलब्धियां प्राप्त कर ली हो, यदि वह परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करता तो अलग रहे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह परमेश्वर का वचन ही सुना रहा हो। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे भी बातचीत करता है, ताकि हम अपने लोगों को चेतावनी दे, उस भयानक दंड से उनको आगाह करें। जिस प्रकार परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना ताकि उसके द्वारा से सत्य वचन यहूदा के लोगों तक पहुंचाया जाए, क्या आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? क्या आप उसे मान रहे हैं? मेरे प्रियो, यह प्रश्न आपके लिए है। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों पर अवश्य ही विचार करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना। रूह पाक मददगार है हिम्मत न हारना, रूह पाक मददगार है हिम्मत न हारना, रूह पाक मददगार है हिम्मत न हारना, रूह पाक मददगार है हिम्मत न हारना।
दनाई बख्शेगा वही हिम्मत न हारना, दनाई बख्शेगा वही हिम्मत न हारना। तुम्हारा बाप है हिम्मत न हारना।